صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عبد الرحمن بن المبارك, یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہے, عبد الرحمن ابن عبداللہ العیشی المبارک. ان کے استاد ہیں حماد ابن زید. اب ان کو ذرا سمجھ لو, حماد ابن زید کو. حماد نام کے دو راوی حدیث کی سند میں زیادہ مشہور ہے. ایک ہیں حماد ابن زید جو یہاں پر ہے, اور ان کا پورا نام حماد ابن زید ابن درہم. حماد ابن زید ابن درہم. دوسرے کے دادا ہے, دوسرے ہیں حماد بن سلیمہ بن دینار. حماد بن سلیمہ بن دینار, یہ دو حماد, دونوں کو حمادان کہا جاتا ہے, دونوں کا لقب حمادان. عجیب بات یہ ہے دونوں کوفہ کے رہنے والے ہیں, حماد ابن زید ابن درہم بھی اور حماد ابن سلیمہ ابن دینار بھی, دونوں کوفہ کے رہنے والے ہیں. دونوں کے اساتذہ اور تلامذہ ایک ہے, اساتذہ بھی دونوں کے ایک, تلامذہ بھی ایک. اسی لیے جب کبھی حدیث کی سند میں صرف لفظ حماد آتا ہے تو اشتباہ ہو جاتا ہے کہ یہ حماد ابن زید ابن درہم ہے کہ حماد ابن سلیمہ ابن دینار ہے, کون ہے, اشتباہ ہو جاتا ہے. اب بعض حضرات نے دونوں میں کون بڑا ہے علم کے اعتبار سے اس موضوع پر بحث بھی کی ہے, تو ایک بہت اچھا لطیفہ اور نقطہ کہا کہ حماد ابن سلیمہ ابن دینار زیادہ افضل ہے. حماد ابن سلیمہ ابن دینار زیادہ افضل ہے. تو کہا کہ کفضل دیناری علی دراہیم, کفضل دیناری علی دراہیم. دینار سونے کا ہوتا ہے, درہم چاندی کا ہوا کرتا ہے, اسی لیے دینار کی فضیلت زیادہ درہم کے مقابلے میں. اسی لیے حماد ابن سلیمہ ابن دینار افضل ہے حماد ابن زید ابن درہم کے مقابلے میں. یہ ایک لطیفہ ہے اس حدیث شریف کی سند کا. اسی طریقے سے حضرت ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس حدیث کے راوی ہیں. ان کے جو استاد ہے ان کے دادا کا نام بھی دینار ہے, یونس ابن عبید ابن دینار. تو اس زمانے میں لوگ اس طرح کے نام رکھا کرتے تھے, درہم بھی نام رکھتے تھے, دینار بھی نام رکھتے تھے, اس طرح کے نام. اب یہ نام اس زمانے میں مفقود ہے, آپ ذرا شروع کیجئے. ان کے استاد ہیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. انیل حسن, انیل حسن یعنی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, مشہور جلیل القدر تابعی. इनके बारे में एक अजीब बात यह है कि इनकी वालिदा का नाम खीरा था, खा या रा गोलता, और वो हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीस थी, बांधी थी आजाद करदा हजरत उम्मे सलमा की। इनको सआदत ये हासिल है कि बचपन में उनकी वालिदा खियरा काम करते करते हजरत उम्मे सलमा के पास इनको छोड़ के कहीं चली जाती थी, क्योंकि हजरत उम्मे सलमा की बांधी थी। हजरत उम्मे सलमा ने कोई काम इनको सौंपा तो ये इनकी वालिदा खियरा काम में चली जाती थी, तो इनको हजरत उम्मे सलमा के पास छोड़ के जाती। ये शीरख्वार थे, दूध रजात का जमाना इनका चलता था। अब माँ का किसी काम से गई खियरा, और उस दरमियान ये बच्चा रोने लगा तो हजरत उम्मे सलमा उनको दूध पिला दिया करती थी। बास मरतबा ऐसा हुआ कि माँ इनको हजरत उम्मे सलमा के पास छोड़ के कहीं चली गई तो जरूरत के मौके के ऊपर दूध पिला दिया हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने। इस एतबार से अगर देखने जावे तो हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा इनकी रजाई माँ हुई, और ये तमाम ताबईन में सिर्फ इनको ये खसूसियत हासिल है कि उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा से इनको शर्फ रजात हासिल हुआ। गोया कि हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा इनकी रजाई वालिदा हुई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके रजाई वालिद हुए हजरत उम्मे सलमा की निस्बत से। ये इनको एक खसूसियत और खूबी हासिल है, और ताबीन में किसी को ये खूबी हासिल नहीं है। उसके बाद रावी हैं अल अहनफ इब्ने कैस, अहनफ इब्ने कैस। अब अहनफ इब्ने कैस के बारे में समझो, ये वो खुश नसीब इंसान हैं कि उनके लिए ईमान लाने से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगफिरत की दुआ की थी। जब ये ईमान भी नहीं लाए थे उस जमाने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए मगफिरत की दुआ की थी। कैसे? खुद अहनफ इब्ने कैस बयान कर रहे हैं कि एक मर्तबा में काबा शरीफ का तवाफ कर रहा था तो कबीले बनू लैस के एक आदमी ने मुझे खुशखबरी सुनाई कि मैं तुमको एक खुशखबरी सुनाऊं। तो कहा जरूर सुनाओ। वो आदमी कबीले बनू लैस का था, तो कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे आपके कबीले के पास ईमान की दावत लेके भेजा था। अहनफ इब्ने कैस के कबीले के पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान की दावत लेके भेजा था कबीले लैस के एक आदमी को। कहा मैं ईमान की दावत लेकर के गया तो अक्सर लोगों ने मेरी दावत कबूल नहीं की। अहनफ इब्ने कैस के कबीले के अक्सर लोगों ने दावत कबूल नहीं की और बल्कि मेरी बात की तरफ ध्यान भी नहीं दिया कि मैं क्या कह रहा हूं। ये अहनफ इब्ने कैस उस वक्त बच्चे थे, बहुत छोटे थे, तो उन्होंने वो लैसी दाई जो आए थे कबीले लैस के आदमी जिनको हुजूर ने भेजा था उनकी बात सुनी। ये बच्चे थे तो कहने लगे कि आदमी सही कह रहा है, इसकी बात पर ध्यान देना चाहिए। ये किसने कहा? अहनफ इब्ने कैस ने। वो बच्चे थे और कबीले के सब बड़े लोगों ने बुजुर्गों ने सब ने इनको झुठला दिया, इनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, वो लैसी आदमी जो हुजूर की तरफ से दाई बन के गए थे। लेकिन यही एक बच्चा बोला कि आदमी सही कह रहा है, इनकी बात पर ध्यान देना चाहिए। बहरहाल बात पूरी हो गई, कब मैं वापिस आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कारगुजारी पूछी कि भाई तुम गए थे तो क्या रहा ईमान की दावत देने के लिए? तो मैंने कहा कि हुजूर किसी ने मेरी बात सुनी नहीं, किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, बस एक बच्चे ने मेरी बात सुनी, उस बच्चे का नाम अहनफ इब्ने कैस था। उसने मेरी बात सुनी और कहा कि ये आदमी अच्छा है, इसकी बात सुनने के काबिल है। तो कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अग़फिर लिल अहनफ, ऐ अल्लाह अहनफ की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। तो ये उस वक्त के ऊपर छोटे थे, इनको कुछ याद नहीं रहा कह करके, लेकिन इनके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मग़फ़िरत की दुआ फरमाई, बाद के अंदर ये ईमान ले आए। तो बस जब मैंने ये वाकिया सुना तो मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई कि अच्छा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ की थी, मुझे बहुत खुशी हुई। तो ये अहनफ इब्ने कैस वो सआदतमंद आदमी है। अच्छा, लेकिन अजीब बात क्या है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार तो इनको नसीब हुआ, रुयत तो नसीब हुई, लेकिन हुजूर की जिंदगी में ईमान नहीं लाए, ईमान बाद में लाए। इसीलिए ऐसे हजरात के लिए पीछे भी एक लफ्ज गुजरा सनद में, रुयतन सहाबी है, रिवायतन ताबेई है। रुयतन सहाबी और रिवायतन क्या कहलाते हैं, ताबेई। चूंकि हुजूर की रुयत नसीब हुई लेकिन ईमान हुजूर की जिंदगी में नहीं लाए, हुजूर की जिंदगी के बाद ये ईमान लाए। बड़े हलीम थे ये अहनफ इब्ने कैस। तो हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अहनफ इब्ने कैस रहमतुल्लाह अलैह से नकल करते हैं, ये वाकिया जंगे जमल का है। इस रिवायत में जो वाकिया है जमल के मौके का ये वाकिया है। ज़हबतु का मैं चला, कौन चला, ज़हबतु का फाइल कौन, अहनफ इब्ने कैस का मैं चला। क्यों चला, ताकि मैं इस मर्द की मदद करूं। अर रजुल मुअर्रफ बिल्लाम है, इसलिए उससे मुराद है हजरत अली करमल्लाहु वजहहू, और बाज़ रिवायत में सराहतन भी मौजूद है। इस्माइली की रिवायत में हादर रजुला ऐ अलीयन सराहतन मौजूद है, और किताबुल फितन के अंदर जो है यूं लफ्ज है, उरीदु नुसरत इब्न अम्मी रसूलिल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहां ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई की मदद करने के लिए मैं चला। तो जंगे जमल के मौके पर एक तरफ हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु थे, तो कहा कि अहनफ इब्ने कैस कहते हैं कि मैं चला, मैं निकला ताकि इस आदमी की यानी हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की मैं मदद करूं। फलकी यानी रास्ते में मेरी मुलाकात हो गई हजरत अबू बकरह रदी अल्लाह ताला अन्हु से। देखो ध्यान से समझना, अबू बकर अलग हैं, अबू बकरा अलग है, अबू बकर सिद्दीक अल कुरैशी वो मुराद नहीं, ये हैं अबू बकरा इब्नुल हारिस इब्ने कल्दा। अबू बकरा इब्नुल हारिस इब्नुल कल्दा ये कबीले बनू सकीफ के आजाद करदा गुलाम हैं, इसलिए इनको सकफी निस्बत से याद किया जाता है। अबू बकरा इब्नुल हारिस इब्नुल कल्दा अस्सकफी, और कबीले बनू सकीफ की ये आजाद करदा है इसीलिए सकफी के नाम से मशहूर है। इमाम बुखारी ने अपनी अल जामियु सही में 14 रिवायतें इनसे नकल की है हजरत अबू बकरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से। इनका नाम नुफे था, नून फा या एन नुफे, نفیع ان کا نام تھا ابو بکرہ کنیت کیسے بن گئی؟ کنیت کا واقعہ بڑا عجیب ہے. غزوہ حنین کے موقع کے اوپر غزوہ طائف بھی ہوا ہے, فتح مکہ, فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین, غزوہ حنین کے بعد غزوہ طائف. تو جب طائف کا محاصرہ ہوا تو سب سے پہلے یہ آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے. طائف کے ثقفی لوگوں میں سے سب سے پہلے یہ آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے اور ایمان انہوں نے قبول کیا. اب طائف والوں نے تو قلعہ بند کر لیا تھا, تو آوے کیسے؟ تو وہاں لکڑی کا ایک چرخہ تھا, اس چرخے کے اوپر لٹک کر کے ہی آئے تھے, اور چرخے کو عربی میں بکرا کہتے ہیں, اسی لیے جو ہے ان کی کنیت ابو بکرا بن گئے. تو محاصرے طائف کے موقع کے اوپر یہ ایک چرخے کے اوپر لٹک کر کے باہر نکلے اور آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے, اسی لیے ان کی کنیت ہی بن گئے ابو بکرا. سب سے پہلے طائف کے سقیفیوں میں ایمان لانے والوں میں یہ ہیں. تو کہا میں احنف ابن قیس کہتے ہیں کہ میں جنگ جمل کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کرنے کے لیے نکلا, تو راستے میں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات ہو گئی. فقال اين تريد, تو حضرت ابو بکرہ نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے, کہاں جا رہے ہو؟ قلت انصر هذا الرجل, تو میں نے عرض کیا کہ حضرت میں اس آدمی کی مدد کے لیے جا رہا ہوں. اس آدمی کی یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے میں جا رہا ہوں, کہ حضرت علی کے لشکر میں شامل ہو جاؤں اور ان کی میں مدد کروں. تو حضرت ابو بکرہ نے کیا نصیحت کی؟ ارجع, واپس جاؤ, گھر واپس جاؤ, لڑائی میں مدد کرنے کے لیے جانے کی کوئی ضرورت نہیں, ریٹرن جاؤ. کیوں؟ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا, اِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا, جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ذریعے آپس میں ٹکراوے, جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ذریعے آپس میں ٹکراوے, یعنی دو مسلمان آپس میں قتال پر اتر آوے, دو مسلمان فرد یا گروہ یا جماعت آپس میں لڑنے پر اتر آوے, فالقاتل والمقتول فی النار, تو ایسی صورت میں قاتل اور مقتول دونوں جہنم کی آگ میں جائیں گے. مسلمان آپس میں لڑیں گے, جو بھی مرا قاتل بھی جہنم میں اور مقتول بھی جہنم کے اندر. تو کہا مجھے بہت تعجب ہوا. حضرت ابو بکرہ کہتے ہیں فقلت یا رسول اللہ, میں نے کہا اے اللہ کے رسول, حاضر قاتل, یہ قاتل جہنم میں جاوے یہ تو سمجھ میں آتا ہے, فما بال المقتول, مقتول بیچارہ کیوں جہنم میں جاوے, اس نے کیا قصور کیا کہ وہ جہنم کی آگ میں جلے گا؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقینا وہ مقتول اپنے مقابل کے قتل کا پکا ارادہ رکھتا تھا, حرص رکھتا تھا. یعنی یہ دونوں جب میدان کارزار میں آئے لڑنے کے لیے, آمنے سامنے ہوئے, تو دونوں کے عزائم کیا تھے؟ یہ بھی یہ نیت لے کے چلا کہ اس کو مار ڈالو, وہ بھی یہ نیت لے کے چلا اس کو مار ڈالو. دونوں کی نیت یہی تھی نا کہ یہ اس کو مار ڈالے, وہ اس کو مار ڈالے. یہ تو ہوا یہ کہ قاتل کا وار چل گیا اور مقتول کا وار چلا نہیں, ورنہ تو دونوں کا ارادہ تو وہی تھا, اس لیے مقتول بھی جہنم کی آگ میں جائے گا, چونکہ اس کے بھی عزائم میں سے ہے کہ وہ سامنے والے کو مار ڈالنا چاہتا تھا, اسی لیے قاتل مقتول دونوں کو جہنم کی آگ ملے گی. इसलिए का मैं तुमको कह रहा हूँ वापिस जाओ। जमल में दोनों पार्टी मुसलमान हैं और हुजूर ने दोनों पार्टी अगर तलवार से बरसरे पेकार हो तो उसके लिए हुजूर ने ये बात इरशाद फरमाई है, इसलिए वापिस जाओ। ये हज़रत अबू बकरा रदी अल्लाह ताला उन्होंने अहनफ इब्ने कैस को ये बात इरशाद फरमाई। अब यहाँ दो उन्वान हम समझने के, पहला उन्वान ये समझने का है कि ये जो हदीस का जुमला मुबारक है फल कातिलु वल मक्तूलु फिन्नार, उसका मतलब क्या। एक जाहिरी तशरी तो बतला दी। नंबर एक, अल्लाह ताला इन दोनों को अगर सजा देना चाहे तो जहन्नम की सजा देवे। अल्लाह ताला अगर इन दोनों को सजा देना चाहे तो उनको जहन्नम की सजा देवे। वजह वही जो हदीस में आई। नंबर दो, ये दोनों के दोनों जहन्नम के मुस्तहिक है, कातिल मक्तूल दोनों के दोनों जहन्नम के मुस्तहिक है। अब आगे अल्लाह की मशीयत, अल्लाह की चाहत, अल्लाह चाहे तो इनको जहन्नम में भेजे, अल्लाह चाहे तो ना भेजे। बाकी कातिल और मक्तूल दोनों मुस्तहिक है, इस तरह आपस में लड़ने की वजह से कि इनको जहन्नम में डाला जाए। अब आगे अल्लाह की मशीयत पर है कि अल्लाह ताला चाहे तो इनको जहन्नम में डाले, चाहे तो जहन्नम में न डाले। क्या खुलासा हुआ? इन्होंने जो काम किया आपस में लड़ने का, ये काम इतना बुरा है कि ये दोनों के दोनों जहन्नम की आग के हकदार है। जो काम उन्होंने किया वो काम इतना बुरा है कि दोनों हकीकत में जहन्नम की आग के हकदार है, लेकिन अगर अल्लाह ताला चाहे तो अपनी मशीयत से उसको माफ फरमा सकते हैं। तीसरी बात समझो, यहां मुराद है हलाल समझना, कि कातिल मक्तूल के मार डालने को हलाल समझता है और मक्तूल कातिल के कत्ल को हलाल समझता है। अब दोनों तरफ मुसलमान है और एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के कत्ल को हलाल समझे तो जाहिर बात है कि उसका ईमान खतरे में पड़ जाएगा। तो कातिल मक्तूल के कत्ल को हलाल समझे, मक्तूल कातिल के कत्ल को हलाल समझे तो मुसलमान के कत्ल की हिल्लत ये उनके ईमान को बर्बाद कर सकती है और उसके नतीजे में दोनों जहन्नम की आग में डाले जा सकते हैं। चौथी बात, हालात का पूरा इल्म न हो। दो मुसलमानों के फरीक में आपस में जंग हो रही है, ये और ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। अब हमें हालात का पूरा इल्म नहीं है, हक पर कौन है बातिल पर कौन है कोई पूरा इल्म नहीं हमको। उस वक्त भी हम लड़ने दौड़ पड़े, हालांकि हालात का इल्म नहीं, हक पर कौन और बातिल पर कौन, और हम दौड़ पड़े और दौड़ कर जाकर के किसी के साथ शामिल हो गए, तो ऐसी सूरत में ये सजा भुगतनी पड़ेगी, ये सजा भुगतनी पड़ेगी। इसके लिए एक कैद याद रख, ये जो हदीस शरीफ में वईद है फल कातिलु वल मक्तूलु फिन्नार, ये जाती और इनफिरादी झगड़ों के मुतालिक ये वईद है कि जाती झगड़ा हुआ, इनफिरादी मामले के अंदर झगड़ा हुआ, लेकिन अगर इजतिहादी झगड़ा है तो हदीस शरीफ के मिज़दाक नहीं है। इजतिहादी बुनियाद के ऊपर, इजतिहादी गलती के बुनियाद पर अगर झगड़ा हो तो ये हदीस शरीफ का मिज़दाक नहीं है, ये याद रखना। और जंगे जमल के बारे के अंदर शुर्राह फरमाते हैं कि ये इजतिहादी गलती थी, दोनों फरीक इजतिहाद पर मैदान में आए थे, इनके पास अपने दलाइल, इनके पास अपने दलाइल, दोनों के पास जो है इज्तिहादी मामला था। और मुज्तहिद के मामले में आपको मालूम है कि मुख्ती मुसीब दोनों अल्लाह ताला की यहाँ अजर पाते हैं। इज्तिहाद जो करता है तो खता पर हो तो भी अजर, और सही हो तो भी अजर, अलबत्ता सही पर अजर ज्यादा मिलेगा, खता के ऊपर अजर कम मिलेगा, बाकी अजर दोनों को जरूर मिलता है। तो जंगे जमल का मामला इज्तिहाद पर था, जाती और इन्फिरादी जंग नहीं थी, इसीलिए जो है वो इस हदीस के मिसलात बनेंगे नहीं। ये एक जो है मसला हो गया। दूसरा मामला समझो, मुसलमानों के दरमियान आपस में जंग होती हो तो क्या करने का। देखिए यहाँ हजरत अहनब जा रहे हैं मदद करने, और हजरत अबू बकरा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको रोक दिया, तो मसला पैदा हुआ कि मुसलमानों के दरमियान में आपस में जंग होए तो किसकी तरफदारी करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए। तो इस मसले के अंदर राजेह कौल समझ लो, जब दो मुसलमानों के दरमियान जंग हो, दो फरीक, दो जमात, दो फर्द के दरमियान जंग हो, और जालिम कौन है मजलूम कौन है उसकी तायीन की जा सकती हो, कौन जालिम कौन मजलूम, कौन हक पर कौन बातिल पर, उसकी तायीन की जा सकती हो, और आदमी को पूरा यकीन हो कि ये पार्टी, ये जमात, ये गिरोह, ये फर्द हक पर है और सामने वाला बातिल पर है, ये मजलूम है सामने वाला जालिम है, ये यकीन हो, या ये कि कम से कम जन्ने गालिब हो किसी के हक पर होने का, किसी के मजलूम होने का जन्ने गालिब हो, ऐसी सूरत में जरूरी है कि जिसको हक पर समझे मजलूम समझे उसकी मदद करे, जिसको मजलूम समझे जिसको हक पर समझे उसकी मदद करे, ये उसके लिए जरूरी है। और अगर पता ही नहीं चल सकता किसी दलील कवि की बुनियाद पर, जन्ने गालिब की बुनियाद पर, कौन हक पर कौन बातिल पर, कौन सही कौन गलत, कौन जालिम कौन मजलूम, ये फैसला ही नहीं हो सकता, तो ऐसी सूरत में कनारा कशी इख्तियार कर लेना बेहतर है। साइड पर हो जाओ ऐसे वक्त पर, कनारा कशी इख्तियार कर लो। तो हजरत अबू बकरा रदी अल्लाह ताला अन्हु भी उन सहाबा में से हैं जो फितनों के दौर में अलग थलग रहे, किसी का साथ उन्होंने नहीं दिया, उन लोगों में से हैं ये हजरत अबू बकरा रदी अल्लाह ताला अन्हु। गोया हम यूं कह सकते हैं कि हजरत अबू बकरा रदी अल्लाह ताला अन्हु की राय ये थी कि इस तरह की जंग में एक साइड पर हो जाओ, दोनों तरफ मुसलमान हैं, एक तरफ हो जाओ एक साइड पर हो जाओ, ये इनकी राय थी। और बाज़ हज़रात कहते हैं कि ऐसे मौके के ऊपर जहां जंग हो रही है वो शहर ही छोड़ देने का, दूर चले जाने का, ताकि किसकी मदद करनी ना करनी ये मसला ही खड़ा न होवे। और बाद हजरात कहते हैं कि भाई हक मालूम हो जावे कि कौन हक पर है तो हक के साथ मिलकर के किताल करना चाहिए, हक के साथ मिलकर के मजलूम जालिमों की मुखालफत करनी चाहिए, जालिमों के साथ जंग करना चाहिए। बहरहाल ये मसला है बड़ा नाजुक और बड़ा टेढ़ा, हमारे लिए तायिन करना कि कौन हक पर है और कौन बातिल के ऊपर है। अगर दलाइल की बुनियाद पर हो, जन्ने गालिब की बुनियाद पर हक का पता चले तो उसकी मदद करो। मजलूम की मदद तो ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन अगर पता न चलता हो तो कनारा कशी खलवत गजीनी इख्तियार कर लेना, ये बेहतरीन सलामती वाला रास्ता है। जी ये रिवायत आई हज़रत सुलेमान इब्न हर्ब रहमतुल्लाह ताला अलैह से, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताज। ये मारूर इब्न सुवेद ताबई है, कहते हैं कि हज़रत अबू जर रदियल्लाहु ताला अन्हो से मेरी मुलाकात मकाम रबजा में हुई। हज़रत अबू जर गिफारी रदी अल्लाह ताला अन्हो से तकरीबन 14 हदीसे अल जामियु सही में इमाम बुखारी ने नकल की है। अब ये मकाम रबजा किया है वो समझो। नंबर एक, मदीने मुनव्वरा से 3 मील के फासले के ऊपर ये मकाम रबजा है। दूसरा कौल ये है कि इराक में किसी आबादी का नाम रबजा है। दोनों कौल है, मदीना के करीब मकाम रबजा या इराक में कोई आबादी का नाम रबजा। हज़रत अबू जर रदी अल्लाह ताला नो जिंदगी के आखिरी अय्याम में वहाँ मुंतकिल हो गए थे। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला नो की खिलाफत के ज़माने में, और वहीं इनका मज़ार बतलाया भी जाता है। बाज़ रिवायत में आता है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कुछ बातें फरमाई थी, तो उस बातों को फरमाने के दरमियान हुजूर ने उनको यूं फरमाया था कि देखो, मदीना में तुम्हारी तबीयत न लगेने तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जहाँ हिजरत की वहाँ तुम चले जाना, यानी शाम चले जाना, और वहाँ भी तुम्हारी तबीयत ना लगे तो मकाम रबजा में तुम आ जाना। ये हुजूर ने खुद इनको फरमाया था, चूँकि ये आला दर्जे के तकवा के हामिलीन में से थे। अपने मौकिफ में इधर उधर की लचक वो गवारा नहीं करते थे, और खिलाफत राशिदा के ज़माने में फतुहात की कसरत हुई, हालात कुछ बदले, तो उस वक्त भी वो अपने एक सख्ती के मसलक पर मजबूती से थे। तो ऐसे मौके के ऊपर जो है बड़ों को कुछ नागवार गुजरता है, ऐसे पुराने लोगों का कुछ कहना करना, तो फिर वो वहीं मकाम रबजा में जाकर खलवत नशीनी में ज़िंदगी गुजारी, और वहीं पर फिर उनका इंतकाल भी हुआ और वहीं उनका मज़ार भी बना। तो कहा मैंने हज़रत अबू ज़र रदी अल्लाह ताला अन्हो से मकाम रबजा में मुलाकात की, वालैही हुल्लतुन, उनके बदन के ऊपर एक सूट था। हुल्ला कहते हैं जोड़े को, जोड़ा, सूट, दो कपड़े का हुल्ला बनता है। और उनके गुलाम के बदन पर भी एक जोड़ा था, यानी हज़रत अबू जर के बदन पर भी कपड़े का एक जोड़ा और उनके गुलाम के बदन पर भी कपड़े का एक जोड़ा, और ये आम दस्तूर के खिलाफ था। वजह क्या थी कि दो चादर मिलके एक जोड़ा बनता है, नीचे का कपड़ा ऊपर का कपड़ा। हज़रत अबू जर ने क्या किया था, दो शानदार نئی عمدہ بہترین چادر ان کے پاس تھی، تو اب تقاضا کیا تھا کہ وہ دونوں چادر کو پہنتے، نیچے بھی اوپر بھی، نئی شاندار. غلام ہے ساتھ میں، تو غلام کو کوئی پرانا کپڑا، کوئی سادہ سیدھا ان کو پہناتے. لیکن حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرب کے عام دستور کے خلاف کیا. کیا خلاف کیا؟ دو جو شاندار چادر تھی اس میں سے ایک چادر خود پہنی، دوسری چادر غلام کو پہنائی، اور ایک پرانی چادر خود پہنی، دوسری پرانی چادر غلام کو پہننے دی. گویا کہ جو نئے جوڑے کا دونوں جز وہ انہوں نے تقسیم کر ڈالا، اور ایک چادر اپنے پاس رکھی اور ایک چادر کس کو دے دی؟ غلام کو. حالانکہ دستور کے مطابق کیا کرنا چاہیے تھا کہ دونوں عمدہ چادر خود پہنتے اور دونوں پرانی چادر اپنے غلام کو پہناتے، تاکہ وہ آقا ہے، مالک ہے، تو ذرا اچھے لگے، ٹھیک ٹھاک لگے. لیکن حضرت ابو ذر نے ایسا کیا نہیں تھا، بلکہ سوٹ کو تقسیم کر ڈالا تھا، توڑ ڈالا تھا، اور جو ہے غلام کے ساتھ انہوں نے برابری کی. تو کہا کہ سوٹ بھلے ٹوٹ جاوے، جوڑا بھلے ٹوٹ جاوے، لیکن غلام کے ساتھ برابری ہو جاوے. اس کے لیے انہوں نے یہ کام انجام دیا. فسألتہ عن ذالک، تو میں نے اس سلسلے میں حضرت ابو ذر کو سوال کیا. یہ معرور کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا حضرت یہ کیا کیا آپ نے. دیکھو یہاں ایک بات سمجھو، اگر حضرت ابو ذر دونوں نئی چادر پہنتے، غلام کو دونوں پرانی چادر پہناتے، تو ابھی یہ ناانصافی نہیں تھی، یہ عین انصاف تھا. چونکہ وہ مالک دو چادر کے، خود دو چادر پہنے، غلام کو دو چادر پرانی ہی صحیح پہننے کے لیے دی، یہ بھی بہت بڑا احسان ہے. تو اگر حضرت ابو ذر دونوں چادر خود اچھی نئی پہنتے اور غلام کو سیدھی سادی پرانی دو نئی چادر پرانی چادر پہنا دے، تو ابھی کوئی ناانصافی نہیں ہوتی، وہ بھی عین انصاف تھا. لیکن حضرت ابو ذر نے ایسا نہیں کیا، بلکہ جوڑا توڑ ڈالا اور ایک نئی چادر غلام کو دی، ایک نئی چادر خود رکھی، تقسیم کر ڈالا. فسألتہ عن ذالک، تو میں نے اس کا سبب پوچھا کہ حضرت یہ آپ نے ایسا کیوں کیا. تو کیا فرمایا دیکھو. فقال انی صاببت رجلا، میں نے ایک مرتبہ ایک آدمی کو برا بھلا کہا، کسی غلام کو میں نے برا بھلا کہا. اور دوسری روایت سے تائید ہوتی ہے کہ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے، کہ حضرت بلال کو میں نے کچھ برا بھلا کہا. اور برا بھلا کہنے میں فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ، میں نے ماں کی نام کی نسبت سے آر دلائی، ماں کے نام پر میں نے ان کو آر دلائی. اور کہا تھا نا کہ کالی کے بیٹے، یہ حضرت بلال کو کہا. فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ، ماں کی طرف نسبت کر کے میں نے ان کو آر دلائی. اب ماں کالی ہے تو اس میں حضرت بلال کا کیا قصور؟ یہ کوئی اختیاری چیز ہے؟ وہ تو غیر اختیاری چیز ہے کہ اللہ نے کسی کالی کے پیٹ سے پیدا کیا، کسی کو گوری کے پیٹ سے پیدا کیا، یہ غیر اختیاری چیز ہے. تو کہا میں نے حضرت بلال کو آر دلائی ایک کالی کے بیٹے کر کے. بس حضرت بلال تو پہنچ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کرنے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کیا فرمایا؟ یا ابا ذر اَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ، اے ابو ذر، کیا تم نے بلال کو ماں کی طرف آر دلائی ہے، ماں کے نام سے آر دلائی ہے؟ سوال کیا. उन्होंने इकरार कर लिया, हुजूर ये गलती मुझसे हुई है। देखो यहाँ एक बात समझो, हजरते अबू जर रदी अल्लाह ताला उन्होंने हकीकत में सच्चा जुमला कहा था। हजरते बिलाल को काली का बेटा कहा, यह जुमला कैसा था? बिल्कुल सच्चा जुमला था, लेकिन मकसद था तौहीन करना, मकसद था तौहीन करना। मालूम हुआ कोई बात हकीकत में सही हो लेकिन इससे किसी का दिल दुखता हो, किसी की तजलील होती हो, तो भी वो जुमला नहीं बोलना चाहिए। कोई बात हकीकत में सही हो लेकिन किसी की तौहीन होती हो, तजलील होती हो, दिल दुखता हो, तो ऐसा जुमला बोलना नहीं चाहिए। तो इब्नु सौदा कहा बिल्कुल सही जुमला कहा था, लेकिन उसकी वजह से हजरत बिलाल का दिल दुखा, उनकी तौहीन का अंदाज हो गया, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन तंबीह फरमाई कि भाई ये तो अल्लाह की तखलीक का निज़ाम है, किसी को कहाँ पैदा किया, किसी को कहाँ पैदा किया, इसमें बिचारी औरत का क्या कसूर। और हुजूर ने तंबीह फरमाते हुए क्या फरमाया, इन्नका इम्रुन फी का जाहिलिया। अबू जर तुम एक ऐसे आदमी हो कि तुम्हारे अंदर जाहिलियत की बू पाई जाती है, अभी तक जाहिलियत का असर नहीं गया तुम्हारे अंदर से, यानी अभी तक तुम्हारी आदतें इस्लामी नहीं बनी, कमाले इस्लामी मिजाज अभी नहीं बना, अभी जाहिलियत की कुछ बू तुम्हारे अंदर पाई जाती है। अगर उमुलू में नबूवत का असर तुम्हारे अंदर आ चुका होता तो तुम ऐसा जुमला न बोलते। मालूम हुआ कि देखो भाई, आलिम और जाहिल में फर्क होता है। बाज मरतबा कोई काम जो है ऐसा होता है कि फी जाती ही सही है लेकिन आपके मकाम के मुनासिब नहीं होता है। तो कोई कहेगा ना कि अभी तक तुम्हारे अंदर से जहालत नहीं गई, भले तुम दौरे में आ गए मौलवी बन गए लेकिन अभी तक तुम्हारे अंदर जहालत गई नहीं। तो यही बात, यही जुमला हुजूर ने फरमाया, इन्नका इम्रुन फीका जाहिलिया। अबू जर तुम ऐसे आदमी हो कि उसके अंदर जाहिलियत की बू खू पाई जाती है। इख्वानुकुम खवालुकुम, ये तुम्हारे भाई हैं जिनको अल्लाह ने तुम्हारे खादिम बना दिया, ये गुलाम बांदी, ये तो तुम्हारे भाई हैं जिनको अल्लाह ने तुम्हारा खादिम बना दिया। शुराए हदीस कहते हैं कि देखो ये जुमला बड़ा बलीग है, यूं होना चाहिए कि ये गुलाम तुम्हारे भाई है, लेकिन हुजूर ने क्या फरमाया, हकीकत में तो तुम्हारे भाई हैं लेकिन ये तुम्हारे खादिम बने हुए हैं। उखुवत की तरजीह दी हुजूर ने कलाम में, देखो इख्वानुकुम, हकीकत में तो इंसानियत के नाते तुम्हारे भाई है, ईमानी एतबार से तुम्हारे भाई है, लेकिन कुदरती बात ये तुम्हारे खादिम तुम्हारे गुलाम बने हुए हैं और तुम उनके मखदूम और उनके आका बने बैठे हुए हो। गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तवज्जुह दिलाई कि औलाद आदम होने की वजह से इंसानियत के नाते ये तुम्हारे भाई हैं, इसीलिए रहमो करम का जज्बा होना चाहिए। इसीलिए जज्बा कैसा होना चाहिए, रहमो करम का, मेहरबानी का जज्बा होना चाहिए। जअलहुमुल्लाहु तहता अयदीकुम, अल्लाह ताला ने उनको तुम्हारा मातहत बनाया है, तुम मालिक ये ममलूक तुम्हारे मातहत बनाया। फमन काना अखूहु तहता यदीही, जिसका भाई उसके मातहत हो, यानी भाई है ये तो लेकिन बस कुदरती बात के तुम मालिक बन गए, वो ममलूक बन गया। फलयुतइमहु मिम्मा याकुलू, वो खिलावे उसको जो वो खाता है, जो खाता है वो उसको खिलावे। वलयुलबिसहु मिम्मा यलबसु, जो पहनता है वो अपने गुलाम भाई को भी पहनावे। कितनी बड़ी नसीहत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो गुलामी खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन गुलामों के साथ हुस्ने सुलूक तो किया जा सकता है कि जो तुम खाओ गुलामों को खिलाओ, जो पहनो वो तुम पहनाओ। वला तुकल्लिफुहुम मा यगलिबुहुम, तुम उनको मुकल्लफ बनाओ ऐसे काम का जिसको अंजाम देने से वो हार जावे। तुम उनको मुकल्लफ मत बनाओ ऐसे काम का जिसको अंजाम देने से वो मगलूब हो जावे, यानी थक जावे, हार जावे। यानी ऐसे काम मत सौंपो जो वो कर न सकते, उनके बस में ना हो, वो भी इंसान है। फइन कल्लफ तुमुहुम फाइनुहुम, और अगर तुम उनको ऐसे काम का मुकल्लफ बनाओ तो फिर तुम उनकी मदद भी करो। यानी कभी गुलाम को ऐसा काम सौंपो जो उसकी ताकत से बाहर है तो काम करने में उनकी मदद कर दो। तो अव्वल तो यही फरमाया कि गुलाम बांदियों को ऐसा काम मत सौंपो कि जो उनकी ताकत और इस्तेताद से बाहर हो, लेकिन अगर किसी मौके पर ऐसा काम सौंप दिया तो चल मैं भी तुम्हारे साथ काम में लग जाता हूँ, तुम्हारी मदद करता हूँ ताकि उनके लिए सहूलत और आसानी हो जावे। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमला मुबारक बड़ा जामे है, इख्वानुकुम खवालकुम, तुम्हारे भाई तुम्हारे खादिम हैं। गोया इस्लाम ने गुलामी को भाईचारे में बदल दिया, गुलामी को भाईचारे में बदल दिया। इसीलिए जो खादिम है, नौकर चाकर है, मुलाजिम है, चपरासी है, उनके साथ भाईचारे का मामला होना चाहिए। और इख्वान का लफ्ज मुकद्दम करके अहमियत बढ़ा दी कि ये है तो तुम्हारे भाई लेकिन खादिम है तो तुम्हारे भाई, अहमियत बढ़ा दी। इस्लाम तो वो मजहब है कि जिसने गुलाम और बांदियों के नाम तक बदल डाले। जमाने कदीम में अब्द कहा जाता था, अमत कहा जाता था, इस्लाम ने नई शानदार इस्तिला दी फताई, फता इन्नहुम फितियतुन फता, फताती फताया मेरा गुलाम मेरी बांदी, फताई फताती। हालांकि फतन का लफ्ज नौजवान के लिए बोला जाता है, तो इस्लाम ने तो अब्द और अमत से इस्तिलाह बदल करके फता और फताती तक का लफ्ज बदल डाला। इतनी जो है इस्लाम ने अहमियत दी कि गुलाम और बांदियों के साथ अच्छा सुलूक करना चाहिए। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इनको तंबीह फरमाई हजरत अबू जर को, तो उस तंबीह का खुलासा था गुलाम और बांदी के साथ मुआसात करना जरूरी है। गुलाम और बांदी के साथ मुआसात यानी हमदर्दी करना जरूरी है, मसावात जरूरी नहीं है। देखो अच्छी तरह समझो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मकसद क्या, मुआसात हमदर्दी, मसावात जरूरी नहीं कि बराबरी बराबरी कर ले। यानी उनके साथ हमदर्दी करो, सख्ती न करो, जिस काम को अंजाम देने में वो हार जावे ऐसे काम उनके हवाले मत करो। तो मुआसात मतलूब है, मसावात मतलूब नहीं है। इसीलिए आपने मिश्का शरीफ में एक हदीस पढ़ी है कि भाई कोई खादिम आपके लिए खाना तैयार करे और वो आपकी खिदमत में लेकर के आवे, तो या तो उसको अपने साथ बैठ के खिलाओ और वो आपको गवारा नहीं तो एक दो लुक में उसको दे दो उसमें से। ये कितनी बड़ी शकावत है कि जिस खादिम के पास आपने खाना तैयार करवाया उसको ना आप साथ बैठ के खिलाओ ना उसको एक दो लुक में दो, बल्कि सारा आप ही हड़प कर जाओ, बनाया उसने, मेहनत की उसने। तो ये है इस्लाम का मंशा, मुआसात हमदर्दी, मसावात और बराबरी करना कोई जरूरी नहीं है। और हजरत अबू जर रदी अल्लाह तआला ने نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو ظاہر پر محمول کیا, اور ظاہر پر محمول کر کے انہوں نے جو دو عمدہ چادر تھی ایک غلام کو دے دی, ایک خود پہن لی, اور گویا کہ سوٹ اور جوڑا توڑ ڈالا, لیکن غلام کو بھی برابر کا درجہ دیا. تو مساوات ضروری نہیں تھی, لیکن انہوں نے حضور کے ارشاد کو ظاہر پر محمول کر کے مساوات کا برابر کا برتاؤ کیا. اور پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ جملہ کیسے بول دیا کالی کے بیٹے, تو کہتے ہیں کہ ان کو اس کی برائی معلوم نہیں تھی, اس جملے کی برائی ان کو معلوم نہیں تھی اس لیے بول دیا. اگر اس جملے کی برائی ان کو معلوم ہوتی تو وہ ہرگز نہ بولتے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض وہ جملے ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی اس کو لائٹلی لیتا ہے, ہلکا پھلکا, حالانکہ وہ برائی کا ہوتا ہے. تو حضرت ابو ذر سمجھے کہ ان کی ماں کالی ہے, نے میں ان کو کہوں کہ اے کالی کے بیٹے اس میں کون سی برائی, اسی لیے انہوں نے یہ جملہ کہہ دیا. ان کو اس کی مذمت اور برائی معلوم نہیں تھی, اگر معلوم ہوتی تو وہ ہرگز جو ہے یہ جملہ استعمال نہ کرتے. بس اب اس کے بعد حضرت ابو ذر کو اتنا اثر ہوا طبیعت پر کہ میں نے حضرت بلال کو یہ جملہ کہا, یہ جملہ بول دیا, یہ جملہ بول دیا, اور اس کی وجہ سے حضور نے مجھے نصیحت فرمائی. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر سو گئے باقاعدہ, اپنے گال یوں اوپر کی طرف رکھ کے سو گئے, اور کہا کہ بلال آؤ اور تمہارے پیر میرے گال کے اوپر رکھو. تو حضرت بلال کہنے لگے نہیں 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 یہ کام نہیں ہوگا. تو کہنا میں اٹھوں گا ہی نہیں جب تک تم اپنے پیر میرے گال پہ رکھ کے روندوں گے نہیں, وہاں تک میں نہیں اٹھوں گا. یہ صحبت نبوی کی برکت کہ حضرت بلال کو جو تکلیف پہنچ گئی اس کی تلافی کیسے کی, خود حضرت ابو ذر جیسے جلیل القدر آدمی زمین پر سو گئے اور حضرت بلال کو کہا کہ میرے گال پر قدم رکھو. جب حضرت بلال نے اپنے پیر ان کے گال پہ رکھے تو اٹھے, وہاں تک حضرت ابو ذر اٹھے ہی نہیں. یہ ہے تلافی کی شکل. دیکھو تو جرم کا فوری اقرار کر لیا, اور اقرار کر کے فوراً تلافی بھی کر لی, اور اسی دن سے انہوں نے عادت بنا لی تھی کہ جیسا خود کھاتے ویسا غلام کو کھلاتے, جیسا خود پہنتے ایسا غلام کو پہناتے, بالکل ظاہری حدیث پر عمل, مساوات برابری کرنا, یہ انہوں نے اپنی زندگی کا معمول بنا لیا تھا. اس حدیث شریف سے ایک سبق ہم کو یہ ملا کہ جو منہ میں آیا وہ بولنا نہیں چاہیے, جو منہ میں آیا وہ بولنا نہیں چاہیے, لوگوں پر بیجا الزام بھی لگانا نہیں چاہیے, اس سے بہت بچنا چاہیے. اور ترجمۃ الباب سے ایک بات یہ بھی نکلی کہ جاہلیت کا کوئی بھی فرد ہو, گناہ کبیرہ یا صغیرہ, انسان ایمان سے نکلتا نہیں ہے. ترجمۃ الباب تو وہ تھا نا کہ جاہلیت والی بات, تو جاہلیت کا کوئی بھی فرق چاہے گناہ کبیرہ ہو کہ گناہ صغیرہ, انسان ایمان سے نکلے گا نہیں. گویا معتزلہ کا رد ہو گیا. جی بابن ظلم دون ظلم, اب یہ جو لفظ دون ہیں وہ غیر کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے. اگر دون کو غیر کے معنی میں لے وے تو مراد یہ ہوگا ظلم کے انواع اور اقسام, ظلم کے انواع اور اقسام. اور اگر دون کو ادنا کے معنی میں مراد لے وے تو پھر معنی ہوگا کہ ظلم کے مراتب, کوئی ظلم بڑا خطرناک ہوتا ہے, کوئی ظلم ہلکا پھلکا ہوتا ہے, ظلم کے مراتب. ظلم کا معنی ہے حق تلفی کرنا. وضع الشیء فی غیر محلہ فہو ظلم, اور اس کے مختلف درجات ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا حق بنتا ہے, لیکن کوئی آدمی اللہ کی عبادت ترک کر دے وے یہ سب سے بڑا ظلم ہے. کہ آدمی ایک اللہ کی عبادت کرے یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے, لیکن کوئی آدمی ایک اللہ کی عبادت نہ کرے یہ سب سے بڑا ظلم ہے. تو ظلم کے بھی مختلف درجات ہیں, مختلف اقسام ہیں. بابن ظلم دون ظلم. اب سابقہ باب کے ساتھ ربط سمجھو. کفر کرنا, آدمی جب کفر کرتا ہے تو ایمان سے نکل جاتا ہے. کفر کرنا انسان کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے, ایمان سے نکال دیتا ہے. لیکن بعض مرتبہ کفر کا اطلاق ایسے اعمال پر ہوتا ہے جو ایمان سے خارج نہ کرے. پیچھے پڑھ لیا نے, تو کفر کا معاملہ ایسا ہے کہ انسان کو ایمان سے نکال دیتا ہے. لیکن بعض مرتبہ کفر کا اطلاق ایسے اعمال پر ہوتا ہے جو انسان کو ایمان سے خارج نہ کرے نہ نکالے. جیسے کہ پیچھے گزرا معاصی اور گناہ کے اوپر بھی کفر کا اطلاق ہوتا ہے. اب اس کی دوسری جانب لو. ظلم کا اصل درجہ ہے کہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا آدمی. ظلم کرنے سے آدمی اصل تو یہ ہے کہ ایمان سے نہیں نکلے گا, لیکن بڑا ظلم انسان کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے. بڑا ظلم یعنی شرک کفر, یہ انسان کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے. سمجھ میں آیا بھائی ربط دونوں ابو آپ کے درمیان کے اندر؟ تو کفر میں اصل ہے ایمان سے نکال دینا, لیکن کفر کی بعض صورتیں ایسی ہے جو ایمان سے نکالتی نہیں ہے. ظلم میں اصل ہے ایمان سے نہ نکلنا, لیکن بعض ظلم ایسے ہیں کہ اس سے ایمان سے آدمی نکل جاتا ہے. تو یہ ظلم کے مختلف درجات کا بیان ہے, مختلف انواع اور اقسام کا بیان ہے. جی بخاری شریف میں 8 جگہ یہ روایت ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے دو استاد ہیں یہاں, ایک ابو الولید ہے اور دوسرے بشر ہے. ابو الولید کے الفاظ کتاب الانبیاء میں ہیں, اور یہاں جو الفاظ ہیں نا وہ استاد حضرت بشر ابن خالد العسکری کے ہیں. یہ جو دوسرے استاد ہیں نا وحدثنی بشر کہہ کر کے, ان کے الفاظ یہاں ہیں, اور حضرت الاستاد ابو الولید کے الفاظ کتاب الانبیاء کے اندر ہیں. ان ابراہیم ان القمت ان عبداللہ, یہ بہت ٹاپ کوالٹی کی سند کہی جاتی ہے بخاری شریف کی اسانید کے اندر, بہت عمدہ سند. چونکہ تین تین تابعی یہاں پر موجود ہے, دیکھو تین تابعی, سلیمان ابن مہران الکوفی, ابراہیم ابن یزید نخعی, القما ابن قیس نخعی, تین تین جلیل القدر فقہا تابعی اس حدیث کی سند میں آ رہے ہیں. اس لیے اس سند کو اصح الاسانید کہا جاتا ہے, اور بڑی قوی سند کہی جاتی ہے یہ. اور آگے جا کے صحابی ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, इस उम्मत के मुफ्ती आजम, लिहाजा इसको असहुल असानीत कहा जाता है। और ये सब इमाम बुखारी इमाम अबू हनीफा के असातिजा है, सुलेमान, इब्राहिम नखी, अलकमा, ये सब कब तक भागेंगे हनफियत से। तो अन अब्दुल्लाही, और ये हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि जब ये आयत नाजिल हुई, लम्मा नजलत, देखिए कि इस्तिला समझो, सहाबे किराम और ताबीन किराम के यहां इस्तिलाह ये है कि अगर कोई आयत जिस किसी वाकिए की मिसदाक बन सकती है, जिस किसी वाकिए की मिसदाक बन सकती है, तो वो लोग कहते हैं कि नजलत फी कजा, ये आयत फुला मामले में नाजिल हो गई। यानी हकीकत में उस वाकिए में नाजिल होना जरूरी नहीं। अब हमारे जहन में शान नुजूल का मतलब क्या होता है, कोई वाकिया हुआ और उस वाकिए की वजह से कोई आयत नाजिल हुई तो हम कहते हैं कि ये शान नुजूल है। लेकिन हजरत शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सहाबा और ताबीन के जमाने में ये नहीं था। वो हजरात क्या करते थे, कोई भी वाकिया किसी आयत का मिसदाक बन सकता है तो वो कहते हैं कि उन्ज़िल फी कज़ा, नज़ल फी हा कज़ा, इस तरीके से वो कहते हैं। तो ये आयत नाजिल तो हो चुकी थी लेकिन ये इन्होंने ताबीर की है, आयत तो पहले नाजिल, चूंकि ये वाकिया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का चल रहा है ऊपर से, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाकिए के बाद ये आयत करीमा आई है। तो कहा जब ये आयत नाजिल हुई, الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون, जो लोग ईमान लाए और अपने ईमान में जुल्म को उन्होंने खलत मलत नहीं होने दिया, उन्हीं के लिए दुनिया और आखिरत में अमन है और वही लोग हिदायत याफ्ता है। अब आयत का जाहिर क्या कहता है कि ईमान लाने के बाद जर्रा बराबर भी जुल्म की आमेजिश और मिलावट नहीं होनी चाहिए। ईमान लाने के बाद जुल्म की जर्रा बराबर भी आमेजिश और मिलावट ईमान में नहीं होनी चाहिए। और जुल्म किसको कहते हैं, वज़ुशी फी गैरी महली, और गुना भी जुल्म कहा जाता है। तो कौन इंसान दुनिया के अंदर ईमान वाला ऐसा है कि ईमान लाने के बाद मामूली सा जुल्म, मामूली सा गुना, मामूली सी बुराई उसने ईमान में मिलाई ना हो, कौन इंसान ऐसा है। और बाली ताला ने तो फरमा दिया कि अमन दुनिया आखिरत में किसको मिलेगा, जहन्नम से आजाब से अमन किसको मिलेगा। लम यलबिसु ईमानहुम बिजुल्म, मामूली सा जुल्म भी ईमान में मिलना नहीं चाहिए तो अमन मिलेगा। तो कहा जब भी आयत करीमा नाजिल हुई तो सहाबाए किराम को बड़ा शाक गुजरा, बहुत शाक गुजरा, बहुत गिरा गुजरा कि आयत में ये कहा जा रहा है किसी भी गुनाह का इर्तिकाब ईमान के बाद नहीं होना चाहिए तो ईमान के समरात मुरत्तब होंगे, अगर मामूली गुना भी हो गया, मामूली जुल्म भी हो गया तो समरात ईमानी मुरत्तब नहीं होंगे। तो कहा ये बात सहाबा पर बहुत गिरा गुजरी, बहुत शाक गुजरी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कहने लगे, अय्युना लम यज़लिम, हुजूर हम में से कौन है जिसने जुल्म न किया हो। देखो सहाबा को हर वक्त फिक्र रहती थी आखिरत की कि भाई आयत में तो बहुत सख्त बात आ गई, अल्लज़ीन आमनू वलम यलबिसू ईमानहुम बिज़ुल्म, और हम में से कौन ऐसा है जिसने मामूली जुल्म भी न किया हो, मामूली गुनाह भी नहीं किया हो। तो गोया कि हम तो आयत की बशारत से महरूम हो गए, उलाइका लहुमुल अमन वहुम मुहतदून से महरूम हो गए, हमारा क्या होगा आखिरत में। फ़अंज़लल्लाहु अज़्ज़ा वजल, अल्लाह ताला ने आयत जवाब में नाजिल फरमाई, देखो ये आ गया फ़अंज़लल्लाहु अज़्ज़ा वजल, उस वक्त नाजिल नहीं हुई, नाजिल हो चुकी थी, आयत नाजिल हो चुकी थी, लेकिन हुजूर ने उसकी तफसीर समझाई सहाबाए किराम को कि मेरे लाडले प्यारे सहाबा, तुम जिसको अब जाहिर के एतबार से जुल्म समझते हो वो जुल्म आयत में मुराद नहीं है, बल्कि क्या मुराद है यहां? जुल्म अजीम यानी शिर्क मुराद है। जुल्म अजीम यानी क्या मुराद है? शिर्क। अल्लदीन आमनु वलम यलबिसु ईमानहुम बिजुल्म, जुल्म की तनवीन को ताजीम के लिए ले लो तो क्या हो जाएगा? जुल्म अजीम, कि ईमान के साथ जुल्म अजीम यानी शिर्क न होने देवे। बाकी छोटे छोटे गुनाह हो जावे तो चला लेंगे, कोई हरज नहीं, उसको चला लिया जाएगा, इसीलिए कि उसमें तो तौबा भी आ जाएगी, इस्तिगफार भी आ जाएगा, बाज आमाले सालेहा भी आ जाएंगे, नेकियां भी आ जाएगी, वो सब निभा लिया जाएगा, चला लिया जाएगा, बस जुल्म अजीम यानी शिर्क न आना चाहिए। फिर साथ में क्या आयत बतलाई गई इस्तिदलाल में, कि तुमने नहीं देखा कि हजरत लुकमान अला नबीना वालेही सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए फरमाया था, या बुनैया ला तुशरिक बिल्ला इन शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। तो खुद हजरत लुकमान की जो नसीहत कुरान में मनकूल है उसमें इस जुल्म की तफसीर मौजूद है कि शिर्क करना जुल्म अजीम है। इससे मालूम हो गया कि भाई कोई आदमी ईमान लाया और छोटा मोटा अगर कोई गुनाह हो गया तो वो तो अल्लाह ताला माफ कर देंगे, बस उसके अंदर शिर्क यानी जुल्म अजीम मिलना नहीं चाहिए। अब सहाबाए किराम को तसल्ली हो गई कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो शिर्क से बचे हुए, भले कुछ छोटे मोटे हो जाते हैं वो तो अल्लाह ताला माफ कर देंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम शिर्क से बचे हुए हैं। मालूम हो गया कि जुल्म के दर्जात है, कोई बड़ा कोई छोटा, तफावते दर्जात है।